पृष्ठ संख्या 30, अध्याय 3, पखावज के घराने एवं परंपराएं। न पुष्कर विहीनम ही नाट्य नृतम विराजते, तत्रैव ही श्रुतो लोके तन्मुखम प्रतिपद्यते। नान्यः पुष्कर वाद्यों की महिमा का गुणगान भरत मुनि, नान्यदेव, सारंगदेव जैसे अनेक प्राचीन सर्जकों ने अपनी रचनाओं में गाया है। मृदंग का महत्व भी प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारतीय तालवाद्यों में उसका प्रभुत्व स्वीकृत है। हमारा आधुनिक पखावज भरतकालीन पुष्कर वाद्य का परिमार्जित रूप है। अतः पिछले 2500 से भी अधिक वर्षों से उसकी परंपरा अक्षुण्य चली आ रही है। संभवतः इसे यह धारणा उद्भवित हो सकती है कि प्राचीन काल से भारतीय संगीत में जिस शास्त्रीय गायन शैलियों का समय समय पर प्रचलन हुआ होगा, उन सब के साथ ताल संगति के लिए मृदंग का ही प्रयोग होता आया होगा। भरत के काल से 15वीं शती पर्यंत ध्रुवागान, जातिगान तथा प्रबंधगान जैसी विविध गायन शैलियां भारतीय संगीत का प्रतिनिधित्व करती रहीं। अनुमान है कि उन सब के साथ ताल संगति के लिए मृदंग का ही प्रयोग होता रहा होगा। यद्यपि ध्रुवागान अथवा जाति गायन के साथ मृदंग की संगति होती थी या नहीं, और होती थी तो किस प्रकार होती थी, उसकी प्रामाणिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तथापि ध्रुपद धमार गायकी के साथ पखावज की संगति और उसकी वादन शैली का ज्ञान हमारे पास आज भी लिखित रूप से न सही क्रियात्मक रूप से तो संचित है। भारतीय संगीत में पखावज के घराने और उनके वादकों का क्रमबद्ध इतिहास हमें 18वीं सदी से ही प्राप्त हो सका है। उसके पूर्व भी अनेक उच्च कोटि के गुणी मृदंग वादक थे, जिनके नामों का उल्लेख हमें समय समय पर विविध पुस्तक में मिलता रहता है। आईने अकबरी में अकबर युग के कलाकारों का विवरण है, किंतु उसमें किसी मृदंग वादक का कोई उल्लेख नहीं है। इस क्षेत्र में वाजिद अली शाह के युग में लिखी गई हकीम मोहम्मद करम इमाम की पुस्तक मौदन उल मूसिकी मुगल युग के बाद के कलाकारों का प्रामाणिक परिचय देने वाली महत्वपूर्ण एवं आधारभूत पुस्तक है। इस पुस्तक के उपरांत फकीरुल्लाह की राग दर्पण पुस्तक में भी कुछ पखावज वादकों का उल्लेख मिलता है। राग दर्पण के 10वें अध्याय में फकीरुल्लाह ने एक शतायु पखावजी भगवान दास की चर्चा की है, जिन्हें तानसेन की संगति करने का अवसर मिला था। उसका उद्धरण आचार्य बृहस्पति जी ने खुसरो तानसेन तथा अन्य कलाकार पुस्तक के पृष्ठ 213 पर दिया है। इससे इस तथ्य को आधार मिल जाता है कि तानसेन के समकालीन पखावजी का नाम भगवान दास था। वैसे भी तानसेन, बैजू आदि कलाकार ध्रुपद गाते थे, अतः उनके साथ संगति करने वाले पखावजी का होना स्वाभाविक है। MS म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा के भूतपूर्व प्राध्यापक श्री भरत जी व्यास तानसेन के समकालीन एवं संगतकार भगवान दास पखावजी को अपने समय के श्रेष्ठ कलाकार बताते हुए उनकी मृदंग परंपरा के इतिहास को जावली घराने के नाम से संबोधित करते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा अगले अध्याय में की जाएगी। पृष्ठ संख्या 31। जगपत अथवा जगपति नामक एक पखावजी को भी तानसेन के समकालीन एवं अकबर युगीन उत्तम कलाकार के रूप में बताया गया है। राजा मानसिंह के दरबार में श्री विजय जंगम नामक एक पखावजी थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। मोहम्मद करम इमाम ने मौदन उल मुस्की में सुधीर सेन, हयात, कृपा आदि पखावज वादकों के नाम गिनाए हैं, जिनमें सुप्रसिद्ध पखावजी कृपा मृदंग राय की उपाधि से विभूषित थे। फकीरुल्लाह ने भी राग दर्पण में फिरोज डाढ़ी तथा कृपा पखावजी की चर्चा की है। आचार्य बृहस्पति लिखते हैं, खुशहाल खां को गुड़ समंदर खां तथा कृपा को मृदंग राय की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। इसके उपरांत घासी राम, पखावजी लाल, लाला भवानी दीन तथा हुसैन खां पखावजियों का उल्लेख भी मिलता है। भारतीय संगीत के कुछ विद्वान संगीत शास्त्र एवं संगीतज्ञ अकबर युगीन भगवान दास पखावजी को पखावज की आधुनिक सभी परंपराओं के आदि पुरुष मानते हैं। ऐसा अनुमान है कि भगवान दास की परंपरा उनके प्रशिष्य कृपाल राय से फैली है, जो अपने युग के अद्वितीय कलाकार थे। कुछ विद्वानों का मत है कि कृपाल राय भगवान दास के शिष्य अथवा वंशज थे, किंतु मेरी धारणानुसार कृपाल राय भगवान दास जी के शिष्य नहीं अपितु प्रशिष्य अथवा वंशज होंगे, क्योंकि अकबर युगीन सन 1556 से सन 1605 ईस्वी तथा औरंगजेब सन 1656-59 से 1707 ईस्वी के काल में हुए। कृपाल राय जी के बीच काफ़ी लंबा फासला दिखाई देता है। कृपाल राय जी की वंश परंपरा में पहाड़ सिंह हुए थे, जो जोध सिंह दरबार जोधपुर दरबार के कलाकार रहे। उनके पुत्र जौहार सिंह भी उत्कृष्ट पखावजी हुए। कृपाल राय जी के प्रमुख शिष्यों में घासी राम पखावजी तथा लाला भवानी दीन थे, ऐसा बहुत से विद्वानों का मंतव्य है। वे दोनों अपने युग के अप्रतिम कलाकार हुए। घासी राम जी का जीवन मुख्यतः दिल्ली में ही बीता, जबकि लाला भवानी दीन अपनी अद्वितीय कला एवं विद्या के बल पर संपूर्ण देश में सुविख्यात हुए। आधुनिक संगीत शास्त्रियों एवं पखावजियों के मतानुसार भगवान दास जी की परंपरा के लाला भवानी दीन पखावजी की सभी मुख्य परंपराओं एवं घरानों के सूत्राधार माने जाते हैं। उनका समय सन 1700 ईस्वी के पश्चात का माना जाता है। वे बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले 1719 से 1748 ईस्वी तक के दरबार में प्रमुख कलाकार थे। इस बात का उल्लेख हकीम करम इमाम की मदन उल मुश्की में किया है। मृदंग सम्राट कुदऊ सिंह लाला भवानी दीन के श्रेष्ठतम शिष्य हुए। कुदऊ सिंह जी के उपरांत पंजाब निवासी ताज खां डेरेदार, हद्दू खां लाहौर वाले तथा मियां कादिर बख्श प्रथम आदि उनके शिष्य थे। पृष्ठ संख्या 32। इनके इन मुसलमान शिष्यों से ही पंजाब में पखावज की परंपरा फैली। कुछ लोग नाना पानसे के गुरु बाबू जोध सिंह को भी लाला भवानी दीन का ही शिष्य बताते हैं। इस प्रकार पखावज के सभी मुख्य घराने एवं परंपराओं के मूल में लाला भवानी दीन का ही संबंध जुड़ा है। यद्यपि हमारे पास इस विषय का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तथापि वयोवृद्ध एवं संशोधक वृत्ति के कुछ पखावजियों की परंपरागत मौखिक बातों पर विश्वास करना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। लाला भवानी दीन के नाम के विषय में भी अनेक भ्रांतियां फैली हैं। कुदऊ सिंह जी की परंपरा वाले उन्हें भवानी दीन, पंजाब की परंपरा वाले भवानी दास तथा नाना पानसे की परंपरा वाले उन्हें भवानी सिंह कहते हैं, किंतु ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इस बात पर सभी विद्वानों में मतैक है। जगत पंत जी, भगवान दास जी, कृपाल राय जी, घासी राम जी, हयात, सुधीर सेन, फिरोज डाढ़ी, खुशाल खां, हुसैन खां, चेताराम तथा लाला भवानी दीन के उपरांत अंतिम दो सदियों के सुप्रसिद्ध पखावजियों में हमें अनेक नाम मिलते हैं, जिनमें मोहम्मद खां पखावजी, उस्ताद सलामत हुसैन खां, नवी बख्श पखावजी, कश्मीर मृदंग राज की उपाधि से विभूषित कराई गई थी। मृत्यु अमानुल्ला पखावजी, खब्बे हुसैन ढोलकिया, लाला केवल किशन तथा लाला हरि किशन महाराज ब्रज के वैष्णव संप्रदाय के विविध पखावज कलाकार जयपुर परंपरा नाथ द्वारा मेवाड़ की वैष्णव परंपरा जोधपुर पखावज के पहाड़ सिंह तथा उनके पुत्र जौहार सिंह वाजिद अली शाह के युग के कुदऊ सिंह तथा उनकी विशाल शिष्य परंपरा बाबू जोध सिंह तथा उनके शिष्य नाना पानसे का विशाल शिष्य समुदाय पंजाब के ताज खां डेरेदार हद्दू खां पखावजी मियाँ कादिर बख्श प्रथम नासिर खां मियाँ फकीर बख्श तथा उनके पुत्र मियाँ कादिर बख्श द्वितीय गुजरात सौराष्ट्र के पंडित आदित्य राम जयपुर गुणीजन खाने के पखावजी गण रायगढ़ दरबार के कलावृंद रामपुर दरबार के कलाकार बड़ौदा दरबार गुजरात के कलावंतोनु कारखानु के कलाकार ब्रज के पंडित मक्खनलाल जी आदि हजारों वादकों के नाम हमें मौदन उल मुस्की राग दर्पण तथा आधुनिक युग के लेखकों की पुस्तक में तथा विविध राज्यों के राज दरबारों के ऐतिहासिक पोथी खाने तथा सूचियों से प्राप्त होते हैं। किंतु केवल नामोल्लेख मात्र से समाधान नहीं हो सकता, यहाँ पर विविध घरानों के विस्तृत चर्चा अनिवार्य है जो उनकी उत्पत्ति तथा विकास पर प्रकाश डाल सकें। ऐसी धारणा व्याप्त है कि 13वीं शती में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में देवगिरी के गोपाल नायक नामक विद्वान कलाकार पकड़ लाए थे। देवगिरी को जीतने के पश्चात बादशाह अलाउद्दीन का अफसर मलिक काफूर दिल्ली वापस लौटा तो अपने साथ ऐश्वर्य के साथ साथ वहां के कलाकारों को भी ले आया था। उन दिनों जाति गायन शैली की प्रथा समाप्त हो चुकी थी और प्रबंध गायन गायकी का प्रचार आरंभ हो गया था। कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि नायक गोपाल के साथ उनका पखावज वादक भी दिल्ली आया था जो स्वयं उच्च कोटि का कलाकार था, परंतु उसके नाम परंपरा एवं शिष्यों के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। पृष्ठ संख्या 33। मृदंग अति प्राचीन ताल वाद्य है, किंतु ध्रुपद गायकी के साथ पखावज के रूप में मृदंग का परिष्कार संभवतः राजा मानसिंह तोमर ने किया। तत्पश्चात की 2 सदियों में पखावज वादकों का क्रमिक इतिहास हमें प्राप्त नहीं होता। जो कुछ यहाँ पर मैंने लिखने का प्रयत्न किया है वह अनेक वयोवृद्ध संगीतज्ञों के कथन तथा कुछ पुस्तकों के उल्लेखों पर अवलंबित है। वैसे देखा जाए तो पखावज और तबला के इतिहास में 18वीं शती के प्रारंभ से 20वीं शती के मध्यकाल तक का करीब 250 साल का काल ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। पखावज के जिस बाज और घरानों से हम आज सुपरिचित हैं उन सभी घरानों और शैलियों का प्रारंभ विकास और चरमोत्कर्ष उसी काल में हुआ है। यद्यपि 18वीं शती के पूर्व भी देश में पखावज की परंपरा को सर्वत्र व्याप्त थी ही। हो सकता है कि स्वामी हरिदास के शिष्यों में कोई उच्च कोटि के पखावज वादक भी हुए हों, क्योंकि ध्रुपद गायकी और पखावज के बीच सदैव के घनिष्ठ संबंध रहा है। हमें अकबर काल के 2 उच्च कोटि के पखावज वादकों के नाम मिलते हैं, एक जगपति पखावजी और दूसरे लाला भगवान दास। जगपत पखावजी की शिष्य परंपरा लाला भगवान दास के लिए ऐसी मान्यता है कि वे कदाचित स्वामी हरिदास जी की शिष्य परंपरा से संबंधित थे। लाला भगवान दास के की शिष्य परंपरा में कृपाल राय घासीराम तथा लाला भवानी दीन के नाम लिए जाते हैं। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार सन 1700 ईस्वी के पश्चात हुए लाला भवानी दीन अथवा भवानी दास पखावज के सभी प्रचलित घरानों के आद्य पुरुष थे। उनके प्रमुख शिष्यों में कुदऊ सिंह जी ताज खां डेरेदार तथा बाबू जोध सिंह के नाम लिए जाते हैं। वे तीनों 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए हैं। महाराज कुदउ सिंह जी तथा आपके ताज खां डेरेदार जो उनके शिष्य थे ही उसका उल्लेख अनेक पुस्तकों में मिलता है, किंतु बाबू जोध सिंह के विषय में कुछ शंका होती है। बाबू जोध सिंह लाला भवानी दीन के ही शिष्य थे ऐसा कोई उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता, किंतु अनेक विद्वान उनको भवानी दीन का शिष्य बताते हैं। अतः यह देखा जाता है कि पंजाब, कुदउ सिंह तथा नाना पानसे इन तीनों घरानों के मूल में लाला भवानी दीन ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय के कुछ वयोवृद्ध कलाकारों के अनुसार लाला भवानी दीन जो कि लाला भगवान दास जी की शिष्य परंपरा में आते हैं, ब्रिज की परंपरा से संबंधित थे। उन विद्वानों के अनुसार मृदंग का प्रचलन हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के भक्ति पदों के साथ ब्रज भूमि में हुआ था। बीच के सदियों का विकास क्रम प्राप्त नहीं होता, किंतु मध्य युग में अर्थात 500 वर्ष पूर्व बल्लभ संप्रदाय के प्रारंभ के साथ ब्रज में पखावज का प्रचार व्यापक हुआ। उन दिनों ब्रज में श्याम जी नामक एक पखावजी हुए जो स्वामी हरिदास जी के शिष्य थे। उनके प्रमुख चार शिष्य देश के विविध स्थलों में जा बसे। उनमें से एक का नाम भगवान दास था जो दिल्ली में बस गए। कुछ आधुनिक वैष्णव पखावजियों के अनुसार लाला भगवान दास स्वयं स्वामी हरिदास के शिष्य तथा स्वामी पखावजी के गुरु भ्राता थे। पृष्ठ संख्या 34। भगवान दास जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि वे अकबर युग में हुए थे और तानसेन के समकालीन तथा तानसेन के संगतकार भी थे। अकबर उनकी कला पर मुग्ध था। उनके पुत्रों का वादन कला से प्रसन्न होकर अकबर बादशाह ने उन्हें सिंह की उपाधि दी थी। तब से उनके वंशजों में सिंह विशेषण लगाने की प्रथा चल पड़ी। भगवान दास को अकबर ने जावली नामक एक गांव भेंट भी दिया था। अतः बाद में भगवान दास जी की परंपरा जावली घराने के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी परंपरा के एक कलाकार पहाड़ सिंह जी का उल्लेख हमें नाथ द्वारा के पखावजी घनश्याम जी की कृत मृदंग सागर में प्राप्त होता है। मृदंग सागर में पहाड़ सिंह तथा उनके पुत्र जौहार सिंह को जोधपुर के दरबारी कलाकार बताया गया है। लाला भगवान दास के जावली घराने के विषय में किसी पुस्तक में कुछ उल्लेख नहीं मिलता और मौखिक बातों पर विश्वास कर लेना मनुष्य की तर्कवादी स्वभाव से मेल नहीं खाता, किंतु मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि इस विधान में किसी सीमा तक यथार्थ छिपा है। मथुरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाला भवानी दीन ब्रज की परंपरा से संबंधित थे। वहाँ की परंपरागत मृदंग घराने के वयोवृद्ध पखावजी श्री गोविंद राम जी के पास एक हस्तलिखित पुस्तक देखने को मिली जो उनके चाचा एवं गुरु श्री छेदाराम जी ने 20वीं शती के पूर्वार्ध में मथुरा के श्री 108 स्वामी गोपाल लाल जी महाराज की आज्ञा से गर्ग संहिता के आधार पर लिखी थी। उस अप्रकाशित ग्रंथ में मथुरा की मृदंग परंपरा का इतिहास एवं मृदंग परंपरा के 500 वर्षों का विवरण उपलब्ध है। उस हस्तलिखित ग्रंथ के लेखक श्री छेदाराम तथा उनके शिष्य श्री गोविंद राम के अनुसार मध्य युग में मृदंग की परंपरा पूरे भारत में ब्रज से ही फैली थी। आज भी मथुरा में कोरिया परंपरा के वादकों की श्रृंखला चली आ रही है। कोरिया शब्द कोढ़िया का अपभ्रंश है। कहा जाता है कि इस परंपरा के आद्य पुरुष कोढ़ रोग से पीड़ित थे, अतः उनकी परंपरा कोढ़िया के नाम से विख्यात हुई। आगे के पृष्ठों में श्री छेदाराम द्वारा रचित एवं अप्रकाशित ग्रंथ के लिए पोथी शब्द का प्रयोग किया गया है। पाठक कृपया ध्यान रखें, पोथी के अनुसार श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने लगभग 500 वर्ष पूर्व जब ब्रज की लीला आयोजित करना प्रारंभ किया तो उन्होंने कलाकारों को भिन्न भिन्न कार्य बांटे। उन दिनों गोवर्धन में गिरिराज की तलहटी में एक व्यक्ति कोढ़ रोग से पीड़ित था। श्री वल्लभाचार्य के आशीर्वाद से वह रोग मुक्त हो गया। बाद में उन्होंने उसे मृदंग की शिक्षा देकर श्रीनाथ जी की सेवा में रत रखने की आज्ञा दी। वही आगे चलकर कोढ़िया के नाम से विख्यात हुआ। उस मृदंग वादक के दो पुत्र केवल किशन और जटाधर हुए। दोनों ही अपनी अपनी कला में प्रवीण थे। केवल किशन अधिकतर ब्रज के बाहर रहे और देश के विभिन्न नगरों में घूमते रहे। अतः उनसे तथा उनके पुत्र हीरालाल एवं पौत्र भवानीदास से पखावज की परंपरा भारत के विविध स्थानों में फैली। पृष्ठ संख्या 35। दूसरे पुत्र श्री जटाधर ब्रज में ही रहे, अतः उनकी परंपरा उसी क्षेत्र में विस्तृत हुई। उल्लेखनीय है कि उनकी 12वीं 13वीं पीढ़ी आज भी मथुरा में है। यदि पोथी को प्रामाणिक ग्रंथ मान लिया जाए तो भवानीदास जी केवल किशन के भाई नहीं वरन पौत्र थे। उसमें निर्दिष्ट है कि भवानी दीन ने अपने भतीजे टीकाराम तथा शिष्य कुदव सिंह और अमीर अली खब्बे हुसैन ढोलकिया के पुत्र को शिक्षा दी। टीकाराम के शिष्य बाबू जोत सिंह थे, जिनके शिष्य सुप्रसिद्ध नाना पानसे हुए। नाना पानसे पानसे घराना स्थापित हुआ। इस प्रकार कुदव सिंह तथा नाना पानसे ब्रज के कोढ़िया घराने की देन है। पोथी के अनुसार भवानी दास ने पखावज में मृदंग वादक का प्रचार एवं प्रसार किया। उनके प्रशिष्य जानकी दास ने पंजाब के ताज खां डेरेदार के पुत्र नासिर खां को सिखलाया, जो बाद में बड़ौदा दरबार में नियुक्त हुए। भवानी दास के शिष्य अमीर अली ने पंजाब में लाला भवानी दास द्वारा संशोधित दुक्कड़बाज का प्रचार किया। इस प्रकार मृदंग की परंपरा पूरे देश में ब्रज की देन प्रतीत होती है। जो भी हो, किंतु इसमें संदेह नहीं है कि केवल किशन जी तथा भवानी दास जी, भवानी दीन जी मृदंग की विविध परंपराओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। लाला भवानी दीन के नाम के विषय में भी काफ़ी मतभेद है। कोई उन्हें भवानी दास तो कोई भवानी दीन कहते हैं। हमारे संगीत रत्न संगीत कार्यालय हाथरस प्रकाशन में कुदव सिंह के गुरु का नाम भगवान दास दिया गया है। ब्रज एवं पंजाब परंपरा के लोग उनको भवानी दास कहते हैं, जबकि कुदव सिंह परंपरा वाले उन्हें भवानी दीन कहते हैं। आचार्य बृहस्पति ने भी उनका नाम भवानी दास लिखा है और उन्होंने बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले का दरबारी कलाकार बताया है। लाला भवानी दीन का काल सन 1700 ईस्वी के पश्चात का माना जाता है। बाबू लाल गोस्वामी के एक लेख के अनुसार कुदव सिंह के गुरु भवानी दीन ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह रंगीले को लक्ष्य पढ़ने सुनाकर प्रसन्न किया था। उनका शासनकाल सन 1719 ईस्वी से सन 1748 ईस्वी तक का था। अतः लाला भवानी दीन का नाम 17वीं सदी के अंत से 18वीं सदी के मध्यकाल का रहा होगा। आज तक देश में जितने भी पखावज के घराने या परंपराएं हो चुकी हैं या प्रचार में हैं, उन सभी के विषय में विस्तृत चर्चा अब हम आगे के अध्यायों में करेंगे।